ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। करोमि करोषि विश्व स्थिति संयमोदयम्। करोषि विश्व स्थिति संयमोदयम्। जस्येप्सितं नेप्सितं इक्षितुः गुणैः। जस्येप्सितं नेप्सितं इक्षितुर्गुणैः। माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम्। ग्रामणो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। करोति विश्व संयमोदयम्। जस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः। माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम्। ग्रावणो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। करोति विश्व संयमोदयम्। जस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः। माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम्। ग्रावणो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे।
नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे।
नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे।
माया यथायो भवते तदाश्रयम् नमो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे
सबदार करोति करता है विश्व ब्रह्मांड की स्थिति भरण संयम विलोक उदयम सृष्टि अस्य जिसका स्थितम वांछित न नहीं स्थितम वांछित इच्छितो ऊपर से देखने वाले का गुणई गुणों के द्वारा माया यथा जितना अय लोहा भ्रमते भ्रमण करता है तत् आश्रयम उसके निकट स्थित ग्रावण चुंबक पत्थर नमः नमस्कार ते आपको गुण कर्म साक्षिणे भौतिक प्रकृति की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के साक्षी अनुवादन तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हे प्रभु आप इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन या संहार के इच्छुक नहीं है किंतु बद्ध जीवों के लिए अपनी सृजनात्मक शक्ति के द्वारा इन क्रियाओं को करने वाले हैं। जिस प्रकार चुंबक पत्थर के प्रभाव से लोहे का टुकड़ा घूमता है ठीक उसी प्रकार जब आप समस्त माया पर दृष्टि फेरते हैं तो सारे जड़ पदार्थ गति करने लगते हैं। दोहराइए हे प्रभु आप इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन या संहार के इच्छुक नहीं है किंतु बद्ध जीवों के लिए अपनी सृजनात्मक शक्ति के द्वारा इन क्रियाओं को करने वाले हैं। जिस प्रकार चुंबक पत्थर के प्रभाव से लोहे का टुकड़ा घूमता है उसी प्रकार जब आप समस्त माया पर दृष्टि फेरते हैं तो सारे जड़ पदार्थ गति करने लगते हैं। तात्पर्य कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि जीवों के लिए अनेक प्रकार के कष्टों से पूर्ण इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों हुई। यहाँ यह उत्तर दिया गया है कि भगवान जीवों को कष्ट भोगने के लिए भौतिक जगत की सृष्टि नहीं करना चाहते, वे तो उनके सुख भोग के लिए इसकी सृष्टि करते हैं। प्रकृति के कार्यकलाप स्वतः नहीं चलते रहते, प्रकृति पर भगवान की दृष्टि पड़ने से प्रकृति उसी प्रकार कार्यशील होती है जिस प्रकार की चुंबक पत्थर लोहे के टुकड़े को इधर उधर घुमाता रहता है। चूंकि भौतिकतावादी विज्ञानी तथा नामधारी सांख्य दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते इसलिए वे प्रकृति को बिना किसी अधीक्षक के कार्यशील मानते हैं, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 6, 18, 19 में इस भौतिक जगत की उत्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण जड़ हिते कभू नहे जगत सृजन निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधाने ईश्वरे सत्य तबे हय न हय त निर्माणे। नास्तिक सांख्य दार्शनिक सोचते हैं कि समग्र भौतिक शक्ति से विराट जगत की सृष्टि होती है, किंतु वे गलती पर हैं। जड़ पदार्थ में गति करने की शक्ति नहीं होती, अतः यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। भगवान अपनी सृजन शक्ति का भौतिक अवयवों में संचार करते हैं, फिर भगवान की शक्ति से द्रव्य गति करता है और परस्पर क्रिया करता है। सागर की तरंगे वायु द्वारा गतिशील होती है, वायु की सृष्टि आकाश से होती है और प्रकृति के त्रिगुणों के विक्षोभ से आकाश की उत्पत्ति होती है, तथा वे त्रिगुण समग्र भौतिक शक्ति पर भगवान की कृपा दृष्टि से परस्पर क्रिया करते हैं। अतः सभी प्राकृतिक घटनाओं के मूलाधार श्री भगवान ही है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में आदि 5:59-66 में की गई है। जगत कारण न है प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारी है तारे कृष्ण करे कृपा। कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौण कारण, अग्नि शक्ति लोहे इच्छे करे जारण। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण इच्छे आजा गलस्तन। चूंकि प्रकृति जड़ रूप है अतः भौतिक जगत का वास्तविक कारण नहीं हो सकती। श्री भगवान श्री कृष्ण जड़ प्रकृति में अपनी शक्ति संचार करके अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की शक्ति से प्रकृति गौण कारण स्वरूप है। जिस प्रकार से लोहे अग्नि की शक्ति से लाल होता है, अतः श्री कृष्ण इस विराट जगत के मूल कारण है। प्रकृति बकरी के उस गल स्तन के तुल्य है जिसमें से दूध नहीं निकलता। इस तरह वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों की यह भारी भूल है कि ये पदार्थ को स्वतंत्र रूप से गतिशील मानते हैं। हरे कृष्ण।
जय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक प्रश्न करते हैं, भगवान ने यह सृष्टि क्यों किया? यह प्राकृत जगत अनेक प्रकार के दुख से भरा हुआ है, ये प्रत्यक्ष है, बहुत दुख है यहाँ। तो जीवों को सताने के लिए भगवान ने सृष्टि किया है क्या? क्यों सृष्टि की है? तो इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है कि भगवान इस प्राकृत जगत में सृष्टि करने के इच्छुक नहीं रहते हैं, न इच्छितम। लेकिन यह भी लिखा गया इप्सितम, इप्सितम न इप्सितम, दो बार इप्सित का अर्थ वांछित। भगवान इस जगत की सृष्टि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सृष्टि तो वही करते हैं, तो उनकी इच्छा भी होती है सृष्टि करने की। किस कारण से भगवान ने इस संसार की रचना किया? मुख्य कारण है कि भगवान सभी जीवों को सुख देना चाहते हैं, सुख देने के लिए सृष्टि किए हैं। कैसा सुख? जो जीव का वास्तविक सुख है, यहाँ से शिक्षा दे करके अपने धाम में बुलाने के लिए भगवान ने सृष्टि किया। उनके धाम में ही परम सुख है। जो जीव यहाँ जन्म ले करके प्रकृति के राज्य में दुख का अनुभव कर ले, यहाँ विविध दुख है, जन्म लेना पड़ता है, फिर बुढ़ापा का दुख है, बुढ़ापा और जन्म के बीच में अनेक रोगों का, काम क्रोध लोभ टेंशन ऐसा भरा रहता है। इस दुख इन दुखों का अनुभव करके वो यहाँ से मुक्त होना चाहे, यहाँ से भागना चाहे, इसी के लिए भगवान ने सृष्टि किया है। बिना दुख भोगे यहाँ का जीव को बुद्धि नहीं खुलती है, वो भगवान के धाम में जाना नहीं चाहता है। पर आश्चर्य है कि यहाँ इतना दुख है लेकिन यही वो रम जाता है, यही रहना चाहता है। भगवान जरूर दुख से भरपूर इस दुनिया को बनाए हैं, लेकिन इसी संसार में वे आकर के भगवत गीता भी दिए हैं और श्रील प्रभुपाद जैसा महान आचार्य वैष्णव गीता की व्याख्या भी करता है, भगवत गीता एज इट इज। और भगवान का नाम इस दुनिया में फैला हुआ है, भगवान के अनेक मंदिर हैं, अनेक भक्त हैं। यह सब इसीलिए भगवान ने किया है कि जीव हमारे बारे में ज्ञान प्राप्त करके हमसे प्रेम करे और इस बंधन से मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए सबसे जरूरी उपाय है वैराग्य होना, यहाँ की दुखमयता का अनुभव हो जाना, यहाँ बहुत दुख है ये कंसेप्शन में आ जाना चाहिए, तभी जीव भजन करेगा और छूटना चाहेगा। तो जब तक यह स्थिति नहीं आती है, हम इस जगत को असत्य नहीं समझते हैं, दुखमय दुख से पूर्ण नहीं समझते हैं, तो फिर हम मुक्त होने का साधन भी नहीं करते हैं। तो यहाँ जो दुख की व्यवस्था है, भगवान नहीं चाहते थे कि इसको करें, लेकिन इप्सितम फिर जरूरी हो गया कि ये करना जरूरी है। दुख इसीलिए यहाँ भरे हैं कि जीव सुख के लिए कुछ सोचे, प्रयास करे, साधन करे। तो इस जगत की रचना भगवान की बहिरंगा शक्ति करती है, भगवान के आदेश से। इसी पर ये श्लोक माता भूमि कह रही है, इस जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं, उन 9 वर्षों में आराध्य भगवान है। सबसे पहला है इलावृत वर्ष। इलावृत वर्ष में केवल एक पुरुष है और बाकी सब महिलाएं हैं। पूरे वर्ष में, पूरे भूखंड में केवल स्त्रियां हैं। इलावृत वर्ष में पुरुष केवल एक भगवान शिव हैं, और उन स्त्रियों के साथ भगवान शिव भगवान संकर्षण का भजन करते हैं। इलावृत वर्ष के अधिदेवता हैं संकर्षण भगवान। और इसके बाद, इसके पूर्व में, इलावृत वर्ष के पूर्व में भद्रास्व वर्ष है, जहाँ के अधिपति भद्र सर्वा जी हैं और वहाँ के अन्य निवासियों के साथ भजन करते हैं। वे हयग्रीव भगवान की उपासना करते हैं, जिनका सिर से, जिनका सिर घोड़े का है, घोड़े के आकार का, और नीचे भगवान का स्वरूप है। तो हय शीर्षाभिधानम, हय शीर्षा, हयग्रीव भगवान की उपासना करते हैं भद्रासु वर्ष में। और उससे दक्षिण हरिवर्ष है। हरिवर्ष में भगवान नरहरि उपास्य हैं और उपासना करने वालों में प्रधान है श्री प्रहलाद महाराज। और उसके उत्तर साइड में भगवान कामदेव के रूप में विराजते हैं, तो उनकी आराधना लक्ष्मी जी करती हैं ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ। केतु माल वर्ष कहते हैं, तो इलावृत वर्ष, भद्राश वर्ष, हरि वर्ष और केतुमाल वर्ष। और उसके उत्तर में किम पुरुष वर्ष है। किम पुरुष वर्ष में मुख्य पुरुष हैं भगवान के भक्त श्री हनुमान जी, तो वहां के प्रधान हैं आष्टिक्षेण, तो आष्टिक्षेण के साथ हनुमान जी भगवान सीताराम जी का भजन करते हैं। तो सर्वत्र सब जगह पर भगवान आराध्य हैं सभी वर्षों में और सभी द्वीपों में। और भारतवर्ष, इस भारतवर्ष में श्री नारद जी समस्त भारतीय प्रजा के साथ भगवान नारायण की उपासना करते हैं, नर नारायण की। मुख्य उपासना की विधि भगवान का ध्यान करना और विविध प्रकार से कीर्तन करना। इस प्रकार से जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में भगवान आराध्य हैं, उनकी मूर्तियां विराजते हैं सब जगह। सांख्य और योग के माध्यम से श्री नारद जी भगवान की उपासना करते हैं। और इस जम्बूद्वीप के अतिरिक्त 6 द्वीप हैं, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। तो उन सब स्थानों में भी भगवान ही आराध्य हैं। लक्षद्वीप में भगवान की आराधना लोग करते हैं सूर्य देवता के रूप में, और सालमली द्वीप में चंद्रमा देव, चंद्रदेव के रूप में उपासना करते हैं। और कुश द्वीप में अग्नि देव के रूप में उनकी उपासना करते हैं। क्रांस द्वीप में जल के रूप में उपासना करते हैं और पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी के रूप में उपासना करते हैं। ये सब भगवान की ही विभूतियां हैं, भगवान ही आराध्य हैं। तो उत्तर कुरु द्वीप में स्वयं पृथ्वी देवी भगवान की आराधना करते हैं और भगवान का विग्रह है 12 रूप। तो 12 रूप की वे इसी तरह से स्तुति करते हैं। तो इसमें संदेह नहीं है कि संसार के सभी स्थान में, सभी काल में भगवान आराध्य हैं। आजकल तो लोगों को बहुत भारी अज्ञान छा गया है, लोग समझते हैं कि भगवान है ही नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवतम प्रमाण है कि सभी जगह पृथ्वी के कोने कोने में भगवान की पूजा होती है, आराधना होती है। और इस पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान की पूजा होती है। और पूजा का प्रधान अंग है कि भगवान का श्री विग्रह होना चाहिए। ऐसे यहाँ वर्णन है कि सब स्थान में, स्वर्ग में और पाताल में भी, तल अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल में भी भगवान का श्री विग्रह है, भगवान की मूर्तियां हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस समय संसार में सब जगह भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हैं। यह मायाबद्ध जीवों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, अवसर है कि वे भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ बॉम्बे में भी कई जगह प्रमाणिक मंदिर हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग वहाँ वहाँ भगवान राधा कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं और उनके प्रति अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं। अब दिल्ली में भी बहुत से मंदिर खुले हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार अनेक मंदिर। तो यह मायाबद्ध जीवों के लिए एक सुनहला अवसर है कि वे अपने निकटतम मंदिर में भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं और भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इस प्राकृत जगत में है, इसी के लिए भगवान ने इस दुखमय संसार की सृष्टि किया। कि ठीक है यहाँ दुख है, लेकिन भगवान की भक्ति का प्रचार भी है, भक्ति करने की सुविधा है। और भक्ति करेगा जीव तो माया बंधन से, समस्त दुख से मुक्त हो जाएगा। इसी के लिए भगवान सृष्टि किए। यदि यहाँ भगवान के श्री विग्रह नहीं होते, भगवत गीता नहीं होती, संत महात्मा नहीं होते, श्रीमद् भागवतम नहीं होता, तो यह जगत दुख से पूर्ण और नरक ही है। पर यहाँ सबसे बड़ी अच्छाई है कि इस जगत में भक्त भी हैं, भगवान का नाम सुनने को मिलता है, रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। तो भूत देवी कहते हैं कि यह माया शक्ति ये गौड़ है सृष्टि में, प्रधान नहीं है। इसको चैतन्य चैतन्य में कहा गया है कि माया जगत की सृष्टि करती है, लेकिन भगवान की शक्ति पा करके अपने आप यह जड़ है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की शक्ति प्राप्त करके इसमें सामर्थ्य आ जाता है। जैसे चुंबक के संपर्क में लोहा का टुकड़ा आता है तो चुंबक के कारण घूमने लगता है, इसमें गति आ जाती है। तो माया स्वयं जड़ है, कुछ नहीं कर सकती, पर भगवान की शक्ति से, भगवान की चेतना से इसमें कार्यशीलता आ जाती है, और यही जगत की सृष्टि करती है। भगवान तो अपने धाम में, चाहे क्षीर समुद्र में या कारण समुद्र में सोए रहते हैं। ये माया उनकी दृष्टि पा करके शक्तिशाली बन करके जगत की सृष्टि करती है, जगत को उत्पन्न करती है, मेंटेन करती है और श्रृंगार करती है। करोति विश्वस्य संयमोदयम्। विश्व स्थिति, संयम और उदयम। स्थिति का अर्थ है मेंटेनेंस, ये पालती है, और संयम और प्रलय भी करती है। उदयम सृष्टि, माया जगत की सृष्टि करती है, पालन करती है, किसकी इच्छा से? तो भूदेवी कहते जस इप्सितम, भगवान की इच्छा से। और फिर कहते हैं भगवान की नहीं इच्छा रहती है, न इप्सितम। एक बार भूदेवी कहते हैं भगवान की इच्छा से माया सृष्टि करती है, दूसरी बार कहते हैं कि भगवान की इच्छा नहीं रहती है लेकिन ये जगत की सृष्टि करती है, पालन करते, श्रृंगार करती है। कभी कभी जीवों के दुख को देखकर भगवान की इच्छा हट जाती है कि नहीं करना चाहिए सृष्टि, लेकिन माया को वे काम दे दिए हैं, रूटीन बना दिए हैं कि सब करना है तो करती रहती है। और जीवों के दुख को देखकर भगवान कभी कभी नहीं चाहते हैं सृष्टि रहे, प्राकृतिक बद्ध जीवों को यहाँ शरीर दिया जाए, लेकिन देते हैं, इच्छा हो जाती है। सृष्टि होगी तो बहुत से जीव मेरा भजन करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। इस लालसा से भगवान कहते हैं, माया पर दृष्टिपात करते हैं, ठीक है तुम जन्म दो, पालन करो और प्रलय करो। तो माया उनके इशारे से उनकी शक्ति पा करके करती रहती है, नहीं तो माया में कोई शक्ति नहीं है सृष्टि करने की। एक उदाहरण चैतन्य महाप्रभु देते हैं, माया वैसे है जैसे बकरी के कंधे पर लटका हुआ स्तंभ। आप लोगों ने देखा होगा बकरी के गले में स्तन होता है कभी कभी किसी किसी बकरी, लेकिन उस स्तन में दूध नहीं निकलता, दूध केवल नीचे के स्तन में उसको होता है, वो केवल दिखाने के लिए होता है, ऐसे देखने के लिए है कि माया रचना करती है, लेकिन माया में कोई दम नहीं है, शक्ति नहीं है। भगवान की शक्ति से इसमें शक्ति आती है। और शक्ति कैसे देते हैं? जस इच्छित, भगवान केवल दृष्टिपात से शक्ति दे देते हैं। मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचर, मया अध्यक्षण अभियक्षण। भगवान देखते हैं प्रकृति के गुणों पर दृष्टि डालते हैं तो उनमें क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, और इस तरह से माया कार्यशील होती है। तो भगवान कारण है जगत की सृष्टि के, माया नहीं। ऐसा सोचना कि प्रकृति कर रही है, नेचर कर रही है, ये सब भूल है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिकों को तथा कथित दार्शनिकों को ये बात समझ लेनी चाहिए, तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की सृष्टि है और भगवान के द्वारा मुक्त होने के बहुत से उपाय भी रखे गए हैं। इसी जगत में भगवान का नाम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। अनेक मंदिर हैं, अनेक भक्त हैं, ये सब भगवान की ही व्यवस्था है। अंततः वे चाहते हैं कि हम सब मुक्त हो जाएं और भगवान के धाम में जाएं, उनकी सेवा करें और सुखी रहें। सृष्टि करके केवल जीवों को मारने के लिए, यहाँ रखने के लिए, तड़पाने के लिए भगवान ने सृष्टि नहीं किया है। सृष्टि के पीछे उद्देश्य है मात्रार्थम से भवार्थम से। भगवान चाहते हैं कि जीव शरीर प्राप्त करे और संसारिक सुख भी भोगे लेकिन मुक्त हो जाए अंत में। तो भगवान की जितनी भी व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था है कि भगवान ने अपना नाम इस जगत में रखा है और बार बार अवतार लेते रहते हैं, आते रहते हैं। सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं आएंगे तो भगवान का ज्ञान कैसे, उनका भजन किया जाएगा, ये ज्ञान नहीं हो सकता है। तो स्वयं आते हैं और हम लोगों के लिए सबसे अंतिम बार वे भगवान गौरांग के रूप में आए हैं। कीर्तन करना चाहिए ऐसा उन्होंने सिखाया, स्वयं भक्ति करके सिखाया। तो भगवान जो कार्य कराना चाहते हैं, जिस प्रकार से भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, वही हमें करना चाहिए। भगवान के नाम का आश्रय रहना चाहिए, सवेरे से शाम तक सोने तक भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। इसके साथ ही भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना, आरती करना, विभिन्न प्रकार से सेवा करना है आवश्यक। पर सबसे जरूरी है भगवान के नाम का कीर्तन जप, यही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन, जगन्नाथपुरी में नवद्वीप से हर एक वर्ष भक्त लोग जाते थे रथ यात्रा के अवसर पर, और जब लौटते थे तो ये चैतन्य महापुरुष से पूछते थे कि हमको प्रभु आज्ञा दीजिए हम क्या करें। तो हमेशा वे यही कहते थे, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। हर एक साल लोग पूछते थे और हर एक साल भगवान यही उत्तर देते थे, कृष्ण सेवा। तो कृष्ण सेवा कैसे करेंगे, भक्तों के पूछने पर भगवान ने बताया, अपने घर में कृष्ण को रखो, कृष्ण का श्री विग्रह प्रतिमा, और उनको भोग लगाओ, उनके लिए गीत गाओ, उनका श्रृंगार करो, उनको प्रणाम करो, उनकी आरती करो। इस तरह से कृष्ण सेवा कर सकते हैं। और वैष्णव सेवा, वैष्णवों से प्रेम करना, वैष्णवों को ही कुछ देना, उनका संग करना, ददाति प्रतिगृहणा, वैष्णवों से ही कुछ लेना चाहे देना चाहे, उनको खाना खिलाना, उनके यहाँ खाना और पूज्य बुद्धि रखना। इस संसार में अनेक मनुष्य हैं, लेकिन इन मनुष्यों में अपना कौन है? अपना वही है जो भगवान का भक्त है। ऐसे भगवत भक्तों से संपर्क रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तीसरा बताया नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन दो तरह का होता है। कुछ भक्तों के साथ सामूहिक संकीर्तन, और यदि सुविधा नहीं अकेले हैं तो संख्या संकीर्तन, माला पर जप करना, यही संकीर्तन है। लेकिन उच्च स्वर से उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम करेंगे भगवान के उद्देश्य को समझ करके, तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हम सुखी हो जाएंगे। जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्ण महाराज, ये जो नवद्वीपों का वर्णन है, सप्तद्वीप, नव और वर्ष, ये सब इसी भूतल में ही है महाराज? ये पृथ्वी के चारों ओर हैं ऐसे बताए?
इतना मैं लोकेशन नहीं जानता है, भागवत में वर्णन भी नहीं है, लेकिन इसके वर्णन से लगता है कि इसी ब्रह्मांड में है और इस भूतल से ही कनेक्टेड है। क्योंकि बताया गया कि इलावृत वर्ष पृथ्वी के ठीक मध्य में है, और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जम्बू द्वीप पृथ्वी के बिल्कुल बीच में, भूमंडल के, ब्रह्मांड के बीच में। तो द्वीप जैसे जम्बू द्वीप, लक्ष द्वीप, कुश द्वीप, सात द्वीप, कांस द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये सात द्वीप हैं। वास्तव में भागवत में ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई गई है, किसी तरह से भगवान की महिमा का स्मरण हो इसके लिए वर्णन है। कितना नाप तौल, कौन कहाँ है, कैसे है, जो वर्णन है वो भगवान की सृष्टि में विचित्रता है। भगवान बहुत महान हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं, बस यही वर्णन है। वो कोई सीमा निर्धारित जैसा नहीं है, कोई यहाँ से मध्य प्रदेश है, यहाँ से महाराष्ट्र है और गुजरात है, ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन है ब्रह्मांड के अंदर ही, और विचित्र विचित्र प्रकार के हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं और वहां के निवासी हैं। अद्भुत वृक्ष का वर्णन है, जैसे प्लक्ष द्वीप में पाकड़ का वृक्ष है, एक बहुत बड़ा, एक लाख योजन ऊंचा वृक्ष है, आठ लाख मील ऊंचा वृक्ष है। अब हम लोग ये दिमाग लगा को कहाँ है तो मन से भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो है भगवान की सृष्टि में, कुछ भी अचरज नहीं है। और सांगमली वृक्ष है, सेमल का वृक्ष, वो भी इतना ही बड़ा है जिस पर श्री गरुड़ जी कभी कभी बैठते हैं। तो वहाँ के पर्वत का, वहाँ के वृक्ष का और नदियों का भी वर्णन है। जो कुछ भी वृक्ष हम देखते हैं, इसको तो मनुष्य केवल काटने का काम करता है, लगाने का तो भगवान लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे विचित्र जीव हैं। पुष्कर द्वीप में एक कमल का फूल है जिसमें 1 करोड़ पंखुड़ियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी पंखुड़ियां, और वो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। ब्रह्मा जी उस पर बैठते हैं कभी कभी। कमल से उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो कमल नहीं, ये दूसरा कमल है। उसी के कारण उस द्वीप को पुष्कर द्वीप कहते हैं। पुष्कर का अर्थ है कमल, कमल द्वीप, पुष्कर द्वीप। ये 9 वर्ष जो वर्णन किया जाता है, ये लगता है कि इसकी पृथ्वी पर है, क्योंकि 9 में एक भारतवर्ष तो प्रकट है। भारतवर्ष भी केवल इतना ही छोटा नहीं था, अभी तो हाल में 1947 से पहले यह देश बहुत बड़ा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब इसी के अंदर थे, और इसके पूर्व बर्मा, नेपाल ये सब इसके अंदर ही थे, और एक समय तो संपूर्ण पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा जाता था। भरत महाराज का शासन था सर्वत्र। और श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी कहते थे यह संपूर्ण पृथ्वी भारतवर्ष है, कहते थे हम लोग छोटे से टुकड़े के लिए, कुछ पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो हम लोग शोक करते हैं। यदि हम भगवान के नाम का प्रचार करते रहे बढ़िया से, तो संपूर्ण विश्व फिर से भारतवर्ष हो जाएगा। तो इतना ही स्पष्ट है कि भगवान की सृष्टि है, सर्वत्र उनकी प्रभुता है, सर्वत्र वही आराध्य हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी जो कहते थे वो थोड़ा थोड़ा दृष्टिगत हो रहा है। भारतवर्ष में जो भगवान के भजन की पद्धति है, वही सारे संसार में फैली हुई है ना। इस कान के द्वारा सर्वत्र कीर्तन और वैष्णव वेशभूषा का प्रचार, मंदिर का निर्माण, पुस्तकों का वितरण सब हो ही रहा है। इस कान की भित्ति, इस कान का जो पिलर है बहुत मजबूत है। जो श्रील प्रभुपाद ने बताया है चार पिलर, इस कान रूपी भवन को यही खड़ा किया है और इस पर खड़ा रहेगा, वो है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये चार नियम ऐसे हैं कि इनका पालन होता रहेगा तो कोई भी इस कान, कोई शक्ति इस कान को धराशायी नहीं कर सकता, ये अजर अमर रहेगा, खड़ा रहेगा। संसार में कोई ऐसा दूसरा पंथ नहीं है जो यह खुलम खुला बतावे कि मांस नहीं खाना चाहिए, परंतु इस कान के द्वारा इसका प्रचार है। सबसे पहला नियम है नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग तो मीट ईटिंग नहीं करने पर हिंसा नहीं हो पाएगी, पशु वध है, यह पक्षियों का वध अपने आप रुक जाएगा। परंतु असुर प्रकृति के लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं, अतः वे चाहते हैं कि इस कान का प्रचार न हो, नहीं तो ये सत्य दर्शन फैलाते रहेंगे। नो मेटिटी, नो इंटॉक्सिकेशन, इस शराब का जो इतना प्रचार बढ़ रहा है, सिगरेट आदि पीने का, इन सब पर कुठाराघात होगा। ये हम भक्तों की जिम्मेदारी है कि हम एक होकर के इसका प्रचार करते हैं, ये अपने आप बढ़ेगा। और सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा आधार हम लोगों का है भगवान का नाम। यदि भगवान का नाम कीर्तन होता रहेगा तो इस काम का प्रचार होता रहेगा सब जगह। नाम ही इसका, इसमें ब्लड है, जैसे शरीर में ब्लड होता है, इस कान का या सारी दुनिया का अध्यात्म का यही ब्लड है भगवान का नाम, यही जीवनी शक्ति है। तो भगवान के नाम का कीर्तन जप अपनी शक्ति के अनुसार करते ही रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय श्री प्रभुपाद।